मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 17 जुलाई 2015 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसी के कंटिन्यूएशन में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं शुभम पाराशरी, आप बरेली से हैं, अनुभा, आप भी बरेली से हैं, अरुण कुमार अवस्थी, आप अंबाला कैंट से हैं, चंद्रगुप्त प्रताप सिंह, आप कटिहार बिहार से हैं और मंजुला कौरव, आप मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। तो शुभम, अनुभा, अरुण, चंद्रगुप्त और मंजुला, आप पांचों साथी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबसे ये अर्ज भी करता हूं कि चूंकि आप लोग अब एक तरह से पार्टली ही सही एकेडमी के पार्ट हो गए हैं, इसीलिए प्लीज आप मेरी इस बात को गांठ बांध लें और माने भी कि अब से कम ऑडियो गाइडेंस डेली सुनना है, न्यूज डेली सुननी है और अखबार डेली पढ़ना है। मित्रों, ये जो जरूरत है मैं केवल इसे आईएएस के लिए ही जरूरी नहीं मानता, बल्कि आप यदि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहे हैं तो ये उसकी प्राथमिक शर्त होती है। और यहां तक कि यदि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में नहीं भी बैठना है तब भी, आप चाहे बिजनेस में हो चाहे आप सर्विस में ही क्यों ना हो, आपके दिमाग में अगर अपने देश और दुनिया का सिनेरियो है तो डेफिनेटली आपके जो डिसीजंस होंगे बहुत स्ट्रांग होंगे। जब भी आप किन्हीं दूसरे लोगों से बात करेंगे तो वहां आपके व्यक्तित्व की जो चमक होगी वो बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि जो अपने समय के प्रति जो अवेयरनेस है वो न केवल हमें कॉन्फिडेंस ही पैदा करती है बल्कि एक बहुत ही अलग तरीके का हमें स्वरूप प्रदान करती है, डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है और दूसरों की तुलना में हमें वो माइलेज भी दिला देती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी स्टूडेंट जो एकेडमी में पहले आ चुके हैं, आने वाले हैं, आगे आएंगे या नहीं भी आने वाले हों, प्लीज इन सब की कंटिन्यूटी को कभी भी भंग न होने दें। फ्रेंड्स, आज का जो मोटिवेशन पार्ट है इसमें बात करने के लिए हमारे पास बहुत से तथ्य हैं, उनमें से जो भी वक्त हमें इजाजत देगा जितने की भी उतनी बातें हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उन मित्रों को धन्यवाद दे दूं जिन्होंने ढेर सारी इंफॉर्मेशन मुझे सिविल सर्विस के रिजल्ट के बारे में भेजी हैं। इनमें फ्रेंड्स हैं कृपेश पटेल अहमदनगर से, नवीन वर्मा जो कस्टम एंड एक्साइज में है न्यू दिल्ली से, वरुण पांडे इलाहाबाद से, अतुल नागरगोजे पुणे से, विपुल वार्षणे, सुरेखा मुंबई से, अंकुर दिल्ली से, प्रणव काप से और विभोर दिल्ली से। इन सब ने ढेर सारी इंफॉर्मेशन सिविल सर्विस के रिजल्ट्स के बारे में मुझे भेजी है और डेफिनेटली मैं समझता हूं मित्रों, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, एनालिसिस का सवाल है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि एनालिसिस के ओवरडोज से भी अपने दिमाग को अपच नहीं होने देंगे। काफी कुछ हम जानकारी जुटा चुके हैं, उनको लेकर के हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे और मैं समझता हूं कि अब एक दो के बाद शायद उस तरीके से अब अलग से एनालिसिस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बीच बीच में हम तो बातचीत के दौरान इन बातों को शामिल करते रहेंगे। तो मित्रों, आप सबने जो इतना उत्साह दिखाया, रुचि दिखाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही जब भी आपको कोई एक नई जानकारी मिले, आपको महसूस हो कि ये जानकारी दूसरे स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद हो सकती है और यहां तक कि एनालिसिस के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज वो इंफॉर्मेशन मेरे पास लगातार भेजते रहें। यहां तक कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है, जैसे किसी कैंडिडेट का बहुत अच्छा इंटरव्यू, उसकी लाइफ प्रोफाइल आपको लगता है कि ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणास्पद हो सकता है, क्योंकि आप सबके एरिया में जो ऐसे सफल स्टूडेंट होंगे उनके बारे में अखबारों में छपेंगी, बातें आएंगी, तो आप लोग बिल्कुल मेरे पास भेज सकते हैं और उनको पढ़ने के बाद यदि लगा तो उन्हें उसे हम अपने जो नॉलेज सेंटर है या वेबसाइट के और भी जो दूसरे पार्ट होंगे वहाँ हम अवेलेबल कराएंगे ताकि स्टूडेंट्स जान सकें। और मित्रों, इसी के साथ एक और भी सूचना है कि अब हम लोगों ने सोचा है, ये सब आप लोगों की ही देन है, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो अब afeis.com पर हमेशा अवेलेबल रहेंगी। जैसे अभी रिजल्ट्स की बहुत कुछ एनालिसिस, जैसे मैंने अपर्णा जी का वो लेटर डाला हुआ है वो अवेलेबल रहेगा। और ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, कल मुझे ईमेल में एक बहुत अच्छा आर्टिकल मिला है, वो रजत बोलपुर जो मेरे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने भेजा है। उन्होंने भेजा है दैनिक जागरण में एक लेख छपा था निशांत जैन का। बेसिकली वो लेख तो नहीं है, निशांत जैन से दैनिक जागरण ने बात की थी और उस बातचीत के आधार पर वो लेख तैयार किया गया था। वो 11 तारीख की 11 जुलाई के अंक में छपा था, वो उन्होंने मेरे पास भेजा। मैं इसके लिए रजत को अपनी ओर से और आप सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। मित्रों, मैं समझता हूँ कि जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, खासकर जो हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस लेख को जरूर पढ़ें। इसी दृष्टि से ये लेख अब आपको afeis.com पर हमेशा अवेलेबल रहेगा। मैं थोड़ी सी इस लेख की चर्चा करना चाहूँगा। मित्रों, आप लोगों को ये मालूम है, इससे पहले मुझे जो सूचना मिली थी उसके आधार पर मैंने बताया था कि निशांत जैन इंटरव्यू में थोड़े से उनके कम नंबर रह गए, वो 150 नंबर तक सिमट गए। रिटर्न में उनके सेकेंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट मार्क्स, सेकेंड बेस्ट मार्क्स रिटर्न में उनको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। नो डाउट कि हम ईरा सिंघल के जो नंबर हैं रिटर्न में उसको थोड़ा सा अलग मान रहे हैं, वो एक्सेप्शनली हाई हैं। लेकिन जो निशांत के जो मार्क्स हैं वो बहुत प्रेरणास्पद हैं, हम लोगों को ताकत देने वाले हैं, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से हैं। लोगों के दिमाग में ये धारणा बैठी हुई है कि जो हिंदी मीडियम में जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं उन्हें बहुत नंबर नहीं मिलते, अच्छे नंबर नहीं मिलते, इंग्लिश वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। मैं समझता हूँ मित्रों, आप सबको शुरू से मैं कहता रहा हूँ कि इस धारणा को तोड़ना चाहिए। खासकर निशांत को जो नंबर मिले हैं उसके आधार पर तो आपको इसे ध्वस्त कर ही देना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं उस लेख की चर्चा करूं, मैं अपने दो बातों को करेक्ट करना चाहूंगा जो मुझे आप लोगों से ही जानकारी मिली है। और वो ये कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो हाईएस्ट इंटरव्यू में जो मार्क्स मिले थे वो 217 थे, मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन आई थी, लेकिन उसका करेक्शन है कि वो जो मार्क्स हैं वो 220 हैं। जो हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में वो 220 नंबर हैं। जैनब सैयद को ये मार्क्स मिले हैं, उनके रिटर्न में 731 मार्क्स थे, 731, आप समझिए कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। आप देख रहे हैं कि 800 तक स्टूडेंट पहुंचे हैं, जो फर्स्ट 10 में हमने देखा था 800 के आसपास है, उस हिसाब से कम मार्क्स हैं। अगर थोड़ा सा इसमें कवर कर चुके होते तो कोई डाउट नहीं कि वो टॉपर हो जाते, क्योंकि इंटरव्यू में इनके मार्क्स हैं 220। और यदि हम इस इंटरव्यू के मार्क्स को ईरा सिंघल के मार्क्स से कंपेयर करें तो फिर आप देखेंगे कि ये इंटरव्यू में ही ईरा सिंघल को लगभग लगभग 50 नंबर पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि रिटर्न में बहुत पीछे हो गए हैं इसीलिए इनकी पोजीशन 107वीं हो गई और इनके टोटल मार्क्स हुए 951। दूसरा करेक्शन ये है फ्रेंड्स कि जो पिछले साल के जो टॉपर हैं गौरव अग्रवाल, उनके मैं मार्क्स की चर्चा कर रहा था तो गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया हो कि ये रिटर्न में भी टॉपर हैं, टोटल मिलाकर टॉपर हैं। रिटर्न में जो सबसे अधिक मार्क्स पिछले साल मिले थे वो रचित राज को मिले थे, जिनकी लिस्ट में थर्ड पोजिशन थी, उनको टोटल मार्क्स मिले थे 796। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि सिविल सर्विस में जो टॉपर है एक्सेप्शनली, हम फिर से ईरा सिंघल को किनारे कर देते हैं, तो लगभग लगभग 800 मार्क्स के आसपास होते हैं। 800 मार्क्स का टारगेट जो टॉप करना चाहते हैं, जो फर्स्ट 10 में आना चाहते हैं, उनको बनाकर चलना चाहिए। उसके बारे में हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये दो करेक्शंस थे जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की। अब मैं आता हूं दैनिक जागरण में निशांत जैन ने जो विचार व्यक्त किए हैं। दोस्तों, ये आर्टिकल afeis.com पर अवेलेबल है, अवेलेबल रहेगा, इसे आप लोग समय समय पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इससे महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी अपने लिए निकाल सकते हैं। देखिए, इन्होंने दो बातें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कही हैं, जो वास्तव में जो चीजें प्रिवेल करती हैं। नंबर एक, कि जो एक स्तरीय सामग्री है, जो एक स्टडी जो मटेरियल होना चाहिए और एक लेवल का होना चाहिए, एक तो उसकी कमी होती है और दूसरी गाइडेंस की कमी होती है। ये उन्होंने कहा है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन बातचीत के बाद उन्होंने फिर बाद में जाकर के ये कहा है कि अब प्रायः प्रामाणिक और परीक्षोपयोगी किताबों के अच्छे हिंदी अनुवाद बाजार में उपलब्ध हैं। दोस्तों, अब आप जो भी बहुत अच्छे राइटर हैं, सब्जेक्ट के ले लीजिए या जनरल स्टडीज के ले लीजिए, आपको नो डाउट कि उनके ट्रांसलेटेड वर्जन अवेलेबल हैं। अब ये बात अलग है कि वो ट्रांसलेशन किस तरीके का है, कितना सही है और उसको पढ़ने में आपको किस तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं, वो बिल्कुल एक अलग बात है। तो पहली बात तो उन्होंने कही स्तरीय सामग्री और मार्गदर्शन की कमी। मार्गदर्शन की कमी की उन्होंने बात कही है क्योंकि दोस्तों, हिंदी में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहां पढ़ाने वाले लोग हैं, इंग्लिश में स्टूडेंट्स ज्यादा बैठते हैं, क्योंकि जो शुरू से स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के कह लीजिए कि तो जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो थोड़े से अच्छे हैं, वहाँ पढ़ाने वाले लोग भी थोड़े से स्तरीय हैं, तो स्वाभाविक रूप से होता ही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज का स्तर हिंदी मीडियम की तुलना में थोड़ा सा अधिक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि जिसको ओवरकम नहीं किया जा सके। देखिए, जहाँ तक मार्गदर्शन की बात है, मार्गदर्शन तो एक ऐसी चीज है कि अगर आपको मोटी मोटी और बेसिक चीजें पता लग गई तो मुझे लगता है दोस्तों कि वो सफिशियंट है। डेफिनेटली मार्गदर्शन जो चाहिए वो बहुत सॉलिड होना चाहिए और साथ ही साथ बहुत सही भी होना चाहिए। सॉलिड का मतलब ये नहीं कि बीच ये भी है, वो भी है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये सॉलिड नहीं है। सही का मतलब है जो यूपीएससी तक आपको वाकई में पहुंचा सके, जो वास्तव में चाहिए, उसको मैं कह रहा हूं सही। और मित्रों, मुझे यहां कहने में कोई संकोच नहीं कि केवल इस बात को ही ध्यान में रख करके ये, हालांकि ऑडियो गाइडेंस की बात हम लोगों के दिमाग में शुरू से थी और ये तो हम लोगों ने शुरू कर ही दिया था, लेकिन जब ऑडियो गाइडेंस की बात शुरू की गई थी, इसकी शुरुआत जब हुई थी, उस समय 15 दिन की क्लासेस की बात हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। ये तो बाद में जब स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आने लगी तब हम लोगों को लगा कि नहीं, यदि 15 दिन की क्लासेस भी ऑर्गेनाइज की जाएं तो डेफिनेटली इससे बहुत फायदा स्टूडेंट को हो सकता है, उनको बहुत मदद मिल सकती है। और बाद में जाकर के जब 15 दिन की क्लासेस की बात होने लगी और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, फिर हम लोगों ने उसमें ऐड किया कि नहीं, ये स्टूडेंट सफलता तक पहुंच पाए, अपनी तरफ से हमें कोई कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए, तो फिर हम लोगों ने स्पेशल आरडीओ का प्रोविजन किया ताकि स्टूडेंट्स को एक बहुत जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर सॉलिड एक तरह से आरडीओ नोट्स मिलते रहें। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ऑडियो गाइडेंस के जरिए मैं अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को मार्गदर्शन देने की कोशिश हमारी एकेडमी कर रही है, 15 दिन की क्लासेस के जरिए कर रही है, टेस्ट क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रही है उसके जरिए कर रही है, और मैं समझता हूं, मुझे जानकारी नहीं है कि और दूसरे भी ऐसे फोरम होंगे जो इस तरह की कोशिश कर रहे होंगे, तो एकदम तो जीरो नहीं है मार्गदर्शन की कमी, स्तरीय मार्गदर्शन की। हाँ, संख्या में थोड़ी सी कम हो सकती है, इसके बारे में फिलहाल चूंकि मेरी जानकारी उतनी नहीं है कि पूरे देश में कहां कहां किस किस तरह का मार्गदर्शन दिया जा रहा है, तो मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि कोचिंग संस्थानों पर पूर्ण निर्भरता ठीक नहीं है, इस संदर्भ में स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं है। वो बताते हैं कि कोचिंग का मार्गदर्शन अभ्यर्थियों को एक दिशा तो देता है, मतलब वो आपको गाइड करके एक डायरेक्शन तो बता देता है, लेकिन अगर सोचें कि सिर्फ इसी पर डिपेंड होकर के आप हो जाएंगे तो उसको निशांत जैन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है, स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको रास्ता मालूम हो गया कैसे चलना है, किस दिशा में चलना है, तो फिर कोशिश आपको अपनी तरफ से ही करनी होगी क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो कल मैंने अपर्णा के बारे में बात कही थी दोस्तों, कि आपको अपना खुद तैयार करना पड़ता है, आप कैसे पढ़ाई करेंगे ये आपको खुद तैयार करना पड़ता है, खुद सोचना पड़ता है, वही बात दूसरे शब्दों में यहां निशांत कह रहे हैं। मित्रों, एक बात जो इन्होंने कही है और मैं बार बार अलग तरीके से उसका उल्लेख करता हूं, वो है कि हिंदी माध्यम और जो रीजनल लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं उनमें एक तरह की हीनता की ग्रंथि आ जाती है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है। उनको लगता है कि नहीं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनकी वहाँ ज़्यादा सुनी जाएगी, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, इंटरव्यू में उनको बहुत अधिक नंबर मिलेंगे, वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, हम बहुत पिछड़े क्षेत्रों से हैं, हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बहुत हाई फाई नहीं है। दोस्तों प्लीज़ इस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से उबरिए, इससे उबरना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसकी कोई भूमिका नहीं है। फ्रेंड्स आप देख चुके हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने बात की है कि किस किस तरह के स्टूडेंट जो स्लम्स एरिया में रहे हैं, जिनके फादर डेली वेजर हैं, वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनके पिता जिनका परिवार एक तरह से अनपढ़ जैसा ही है, जो लड़की भैंस पर बैठ करके भैंस चलाने का काम कर रही है वो सेलेक्ट हो रही है, मतलब ये फैमिली बैकग्राउंड से। तो ऐसे कोई एक दो किस्से नहीं है, बहुत से ऐसे किस्से हैं। तो ये सच्चे किस्से ये बताने के लिए पर्याप्त है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सही मार्गदर्शन मिल गया है या आपने खुद अपनी तरफ से रास्ता ढूंढ लिया है, सही रास्ता। और सही रास्ता मिलने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ आप उस पर सफर कर रहे हैं। ढूंढ लिया है कैसे दोस्तों? अभी बहुत से जो सफल स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरव्यू आ रहे हैं, चैनल्स पर आ रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं और तरीके तरीके से आ रहे हैं, वो आपको रास्ता ही दिखा रहे हैं, मार्गदर्शन ही आपका कर रहे हैं। उनसे अगर आप अपने लिए सूत्र निकाल लें और अप्लाई करने लगे तो दैट्स ऑल मोर देन सफिशियंट, वो आपके लिए पर्याप्त होगा, लेकिन आपको उसे देखना होगा। मित्रों एक बात इन्होंने और कही है वो ये है कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम सहज भाव और प्रसन्न मन के साथ पढ़ें, बहुत दबाव में न पढ़ें। अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, या पढ़ने की कला इंग्लिश में है आर्ट ऑफ स्टडी, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें यही, क्योंकि आपका जो दिमाग रिसीव करेगा वो सहजता के तहत ही रिसीव करेगा। अगर आप बहुत दबाव में पढ़ेंगे, बहुत तनाव में पढ़ेंगे, एक दिन में 18 घंटे पढ़ना है और इतना तो पढ़ना ही है, इतना तो रटना ही है, तो उससे बात नहीं बनती है। यानी कि कंटिन्यूटी की बात ही वो कह रहे हैं, भले ही आप थोड़ा पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ते रहें, रोजाना पढ़ें, तो थोड़ा थोड़ा करके आपका कटोरा देखिए कि कुछ दिनों के बाद छलकने लगेगा। और उससे भी बड़ी बात इन्होंने जो कही है वो है, और उसे आत्मसात करने की कोशिश करें, सहज भाव और प्रसन्न मन के साथ पढ़ें और उसे आत्मसात करने की कोशिश करें। आत्मसात शब्द बहुत अच्छा शब्द है, ये सिर्फ हिंदी में है, मतलब वो आपके आत्मा का हिस्सा बन जाए, इसी को हम कहते हैं कि वो आपकी चेतना में रच बस जाए, यानी कि वो आपको बहुत बहुत सामान्य सा लगने लगे, आप उसके साथ इस तरह से खेल सकें जैसे कि कोई फुटबॉल का खिलाड़ी बॉल के साथ ड्रिबलिंग करता है, या हॉकी का खिलाड़ी भी बॉल के साथ आप देखते हैं कि कैसे अपने स्टिक से उसको नचाता रहता है और बॉल उसके कंट्रोल में रहती है। तो वो यहां सीधी सीधी सी बात है कि वो रटने का विरोध कर रहे हैं कि यहां रटने से बात नहीं बनेगी, वो आपकी आत्मा में रच बस जाना चाहिए। वही उसी तरह से फ्रेंड्स की जैसे हम जब खाना खाते हैं तो वो खाना जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में रच बस जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों से एक स्तर की परिपक्वता और संतुलित दृष्टिकोण की अपेक्षा रखता है। एक स्तर की परिपक्वता मतलब एक लेवल तक की मेच्योरिटी आप में होनी चाहिए। नो डाउट कि जो मेच्योरिटी का जो लेवल है वो आपके ग्रेजुएशन का लेवल है। मित्रों इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज में आपको 12th तक का नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन 12th तक की चाहिए, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का जो आप यूज करेंगे, जो मेच्योरिटी है, वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक की होनी चाहिए, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल की है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो एक स्तर की परिपक्वता चाहिए, मतलब आप में उतना टैलेंट होना चाहिए कि आप उन चीजों को पचाकर कुछ उसमें नया जोड़ सकें, उन पर आप बात कर सकें, और संतुलित दृष्टिकोण बैलेंस आपका जो आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। फ्रेंड्स कुछ बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और ये लगा था कि आपको अलग से मुझे बतानी चाहिए, हाईलाइट करनी चाहिए, वो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। ये आर्टिकल afeis.com पर हमेशा अवेलेबल रहेगा, बीच बीच में आप लोग चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इससे अपने लिए हौसला जुटा सकते हैं, आप ताकत जुटा सकते हैं और सच पूछे तो आपको जुटाना ही चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ थोड़े से दूसरे स्तर पर और वो स्तर है, मेरे पास कट ऑफ मार्क्स आ गए हैं स्टूडेंट्स के कि सिविल सर्विस में क्या कट ऑफ मार्क्स है। ये कट ऑफ मार्क्स भी आपको afeis.com पर अवेलेबल रहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसमें जो सबसे चौंकाने वाली तथ्य वाली बात है, इसकी चर्चा मैं आप लोगों से नेक्स्ट मंडे को करूँगा कट ऑफ मार्क्स को लेकर, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है फ्रेंड्स, जो मुझे एक स्टूडेंट ने प्रोवाइड भी किया है, वो है इरा सिंघल के मार्क्स। जो प्री एग्जाम है, उस प्री एग्जाम में जो जनरल कैटेगरी है, उस जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 205 नंबर। 205 नंबर कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं और टोटल मार्क्स है 385, राइट। आपको मालूम है कि जो 15 नंबर जो अंग्रेजी से रिलेटेड थे उसको इससे हटा दिए गए थे, जो इंग्लिश कंप्रहेंशन से संबंधित थे। 385 मार्क्स में इनको इरा सिंगल को मिले 205, राइट। तो 55-56% जो भी मार्क्स आएंगे, हम परसेंटेज पर नहीं जाते, सॉरी इरा सिंगल को नहीं 205 मिले, सॉरी कट ऑफ मार्क्स हुए 205, मतलब जिसके भी 204 नंबर थे वो प्री में सेलेक्ट नहीं हुआ। और चौंकाने वाली बात है कि जिस स्टूडेंट ने टॉप किया सिविल सर्विस में, उनके मार्क्स प्री में रहे हैं 206। ये फ्रेंड्स मेरे पास किसी स्टूडेंट ने भेजा है, हालांकि वो भी डाउट में थे कि सर इनका जो रोल नंबर है ये दिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि ये रोल नंबर इरा सिंघल का ही है या नहीं है। फिर मैंने जब लिस्ट से चेक किया तो वो नंबर इरा सिंघल का ही था। तो देखिए, उस स्टूडेंट के दिमाग में भी जो डाउट आया कि वो इसी बात को लेकर गया कि जो स्टूडेंट मेंस में रिटेन में इतने ज्यादा मार्क्स ला रही है, 920 बहुत ज्यादा मार्क्स है, टॉप कर रही है, जनरल कैटेगरी से टॉप कर रही है, वो प्री में उसके केवल 206 नंबर आ रहे हैं, मतलब जो कट ऑफ मार्क्स है उससे सिर्फ एक नंबर ज्यादा। कल्पना करके देखिए दोस्तों, हालांकि इरा सिंगल ठीक है, मुझे लगता है कि वो PH1 PH2 PH3 के किसी कैटेगरी में होंगी तो उनको दिक्कत नहीं होती, अगर मार्क्स उनके कम भी होते तो शायद वो बिल्कुल सेलेक्ट हो जाती। अब उन्होंने किस कैटेगरी से भरा था हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम टोटल स्कोर करें, हम इस बात को भूल ही जाएं कि वो फिजिकली हैंडीकैप या उसमें है या नहीं है, तब भी आप देखें कि यहां आपको कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये बात प्रूफ करता है कि जो इरा सिंघल की जो एनालिसिस पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। यहां तो तथ्य रटने पड़ते हैं, कुछ फैक्ट्स तो आपको रटने ही पड़ते हैं, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है, जो एनालिटिकल पावर है, वो इरा सिंघल की बहुत बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, सीएम जो सिविल सर्विस की जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ मार्क्स था जनरल कैटेगरी के लिए वो था 205, मेंस का जो कट ऑफ मार्क्स था वो था 678 और जो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ 889, राइट। मैं अब एक बार पढ़ ही देता हूं, ओबीसी के लिए जो प्रीलिम्स का कट ऑफ मार्क्स है वो है 204, देखिए सिर्फ जनरल से एक नंबर कम है, कोई फर्क नहीं है दोस्तों, इस लेवल पर काफी कंपटीशन होता है, 204। जो सिविल सर्विस मेंस का जो कट ऑफ है वो है 631 और फाइनल रिजल्ट का जो कट ऑफ आया है वो है 844। शेड्यूल कास्ट का जो फ्रेंड्स प्री का जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 182, 182, मेंस का जो कट ऑफ है वो 631, बिल्कुल ओबीसी के पैरेलल 631 और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो है 830। शेड्यूल ट्राइब का है दोस्तों प्री का 174, इसके बाद जो मेंस का है वो है 619, 619 और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ है वो है 811। इसके बाद है दोस्तों PH1, PH2, PH3, उसके मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूं, ये अवेलेबल भी होगा इस पर हम लोग, चलिए मैं बता ही देता हूं। PH1 का है दोस्तों प्री का 167, मेंस का है 609 और फाइनल सिलेक्शन है 816। आप देख रहे हैं कि PH1 में जो सिलेक्शन हुआ है वो शेड्यूल ट्राइब से भी अधिक है, शेड्यूल ट्राइब में 811 है और ये PH1 में 816। पीएच टू का है फ्रेंड्स, प्री का है 113, सिविल सर्विस मेंस का है 575 और फाइनल सिलेक्शन है 778 और पीएच थ्री का जो दिया हुआ है फ्रेंड्स वो है 115, प्री का सिलेक्शन है 115, मेंस का सिलेक्शन है 449 और फाइनल सिलेक्शन है 713। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको कट ऑफ मार्क्स बता दिए हैं, ये उस पर वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा, ये आप लोग देख लेंगे। दोस्तों तो आज इस वाले पार्ट में हम इतना ही रखते हैं और अब आगे हम लोग फिर बात करेंगे। अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज़ पर। फ्रेंड्स कल के AIR न्यूज़ में कुछ ऐसी बहुत बातें नहीं हैं जिनको हम लोग बहुत यहां डिस्कशन में अपना ले सकते हैं, केवल एक जो सबसे दो खबरें मैं मानता हूं कि एक बड़ी खबरें थी। पहला तो ये फ्रेंड्स कि अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो जातिगत आंकड़े थे उन्हें वो जारी करेगा। एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है। आपको मालूम है कि 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो और जनगणना होने जा रही थी तो उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जातियों के भी आंकड़े इकट्ठे किए जाएं। हालांकि 1931 से आपको ध्यान होगा कि मैंने इसको लेकर के आपको आर्टिकल भी प्रोवाइड किए हैं। 1931 में ये आंकड़ों जाति के आधार पर जनगणना बंद कर दी गई थी, वो फिर से इस बार शुरू की गई थी। जब जनगणना आंकड़े आ गए तब इस पर विवाद होने लगा कि इसे जारी किया जाए या नहीं जारी किया जाए। पहले सरकार भी इसके बारे में अनमनी थी, लेकिन अब सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो आंकड़े जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल जो हमारे नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो इन आंकड़ों का वर्गीकरण करेगी और इसके बाद ये जारी किए जाएंगे। डेफिनेटली फ्रेंड्स जब ये आंकड़े आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे, बहुत ही सॉलिड आंकड़े होंगे। सच पूछे तो इसको जारी न करने के पीछे जो एक एप्रिहेंशन था वो ये था कि हमारा संविधान भी जाति को खत्म करने की बात करता है, समाज में समानता की बात करता है और भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली जाति और धर्म को बहुत प्रोमिनेंस देता है। तो ऐसी स्थिति में ये था कि क्यों इसके आंकड़े दिए जाएं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि हम अलग अलग, मान लीजिए अल्पसंख्यकों के लिए काम हो रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और दूसरी जातियों के लिए काम हो रहा है, तो अगर आंकड़े आते हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं कि किस वर्ग में क्या स्थिति है, क्या सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक स्थिति है, उसके आधार पर योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो भय होता है वो ये है कि कहीं इन जातिगत आंकड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल न किया जाने लगे, वोट बैंक के लिए न किया जाने लगे, वो एक हिच लोगों के दिमाग में है। लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि वो आंकड़े जारी किए जाएंगे। दूसरी जो खबर थी दोस्तों वो नेट निरपेक्षता को लेकर की थी, उस पर रिपोर्ट आ गई है। नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के जो बात हो रही थी उस पर आपने न्यूज़ में थोड़ी बातें सुनी हैं और आज इसी को लेकर के दैनिक भास्कर ने अपना एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है। वो एडिटोरियल कमेंट मैं आप लोगों को नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे आप देख लेंगे। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि जो नेट न्यूट्रलिटी जो टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को देखिए आप सीधे सीधे आपसे नहीं पूछा जाएगा कि क्या नीति है, उसमें जो सबसे कोर जो एरिया होगा जो क्वेश्चन पूछा जाने का जो सिविल सर्विस के लिहाज से हम देखें तो वो यही होना चाहिए, वो हो सकता है कि भारतीय समाज के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में देश के संदर्भ में नेट न्यूट्रलिटी सही है नहीं है, क्यों है, होना चाहिए किस तरीके से होना चाहिए, फिर जो जिस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था आगे बढ़ रही है प्राइवेट कंपनीज आ गई हैं उसमें इससे कितना नुकसान होगा, उनके प्रेशर का गवर्नमेंट क्या करेगी। क्योंकि भारतीय समाज की जब आप संरचना की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास ग्रामीण आबादी बहुत है जहां तक हमारे पास पहुंच नहीं है, अगर सूचना की पहुंच उनके लिए हो सकती है, वो आबादी बहुत ज़्यादा शिक्षित भी है। फिर हम देखते हैं कि युवा वर्ग हमारे पास सबसे ज़्यादा है और ये युवा वर्ग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो कैसे उनका इस्तेमाल करें। फिर आप मेक इन इंडिया भी कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया में नेट न्यूट्रलिटी कितना बड़ा रोल हो सकता है। तो ये बड़े डिफरेंट इसके एंगल हैं दोस्तों। तो जब आप इसके बारे में कुछ भी पढ़ें तो आप इन एंगल्स को दिमाग में ध्यान अपने दिमाग में रखें ताकि आप इनके प्रश्नों के सही सही और सॉलिड आंसर दे सकें। तो दोस्तों यही दो मेन खबरें थी। हाँ आज के अखबारों में कुछ अच्छी बातें हैं बड़ी बातें हैं वो मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स का स्किल इंडिया के ऊपर है, दैनिक जागरण में गांव की अनदेखी करके है, कि किस तरह से गांव की अनदेखी हो रही है। हम चूंकि मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो गांव हमारे छूट रहे हैं। मैं समझता हूं कि लिबरलाइजेशन के दौर में के विश्लेषण के लिए यहां से आपको कुछ सामग्री मिल जाएगी। एक अच्छा एडिटोरियल कमेंट प्लूटो के लिए भी है कि प्लूटो तक हम अमेरिका का विमान पहुंच गया जिसका नाम है न्यू होराइजन, तो उसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट है। तो इस तरह से कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, ये मैं नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन्हें आप अपने ढंग से देख लेंगे। फ्रेंड्स अब हम आते हैं इसके अंतिम चरण पर, और इसका अंतिम चरण है ईमेल का चरण। तो सबसे पहले मैं नचिकेता वत्स को धन्यवाद देता हूं कि वो गया में AFEIS क्लब का काम उस काम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। उनका पूरा ग्रुप है जो इस काम को कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। खासकर दशरथ माझी उसी एरिया के रहे हैं तो मैंने उनका नाम लिया था। तो नचिकेता बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और गया से तो मेरा क्या दुनिया का संबंध है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये बात शायद 1990 के आसपास की है, किसी देश का गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा मंदिर बना था, शायद श्रीलंका का था या किसका, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस समय शंकर शर्मा जी उपराष्ट्रपति थे, तो उस मूर्ति के उसके लिए अनावरण के लिए उपराष्ट्रपति जी जब गए थे तो मुझे भी गया जाने का मौका मिला था। और इसके बाद जब मैं मसूरी ट्रेनिंग में था तब विलेज विजिट भी हमारी गया में हुई थी, तो गया के एक गाँव में हम लोग रुके थे, एक स्कूल में रुके थे, गर्मी के दिन थे और उस समय भी गया हम लोग फिर गए थे, घूमने के लिए गए थे, क्योंकि वो गौतम बुद्ध का स्थान था वो। तो गया से तो वैसे ही एक जुड़ाव है और आप सब वहाँ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग खूब इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मित्रों मेरे पास एक मेल आया किरण राजपूत का, पहले भी वो मेल लिखती रही हैं। उनके माँ को कुछ ब्रेस्ट कैंसर था और हम लोगों ने प्रार्थना की थी उनके माँ के स्वास्थ्य के लिए, और बेहद खुशी है कि किरण सिंह राजपूत का मेल आया है कि अब उनके माँ का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है। किरण इसके लिए बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी माँ जल्दी से जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हों और आप फिर प्रसन्न मन से फिर से अपने काम में अच्छी तरह जुट जाएं। मित्रों एक मेल है अखिलेश जोयाल का, जिन्होंने एक कहानी भेजी, खासकर इच्छा शक्ति की कहानी। मैं उसमें कहूँगा कि उनके टिहरी जनपद में ये एक मलेथा गांव है कि किस तरह से वहाँ एक व्यक्ति ने उसी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर 2 किलोमीटर लंबी नहर बना करके, टनल बना करके और गांव में पीने का पानी मुहैया कराया। बहुत अच्छा अखिलेश, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार कि आपने इसकी जानकारी मुझे भेजी। मित्रों चार दोस्तों ने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं जो अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं। मैं उन चारों के नाम, उनके स्थान और मोबाइल नंबर पढ़ रहा हूं। आप लोगों में से जिनके लिए भी ये जरूरी हो वो नोट कर सकते हैं। एक है अखिलेश कुमार जो रोहतास से आ रहे हैं, सासाराम से, इनका मोबाइल नंबर है 9801484426। दूसरे हैं अंकित कुमार जो इलाहाबाद से यहाँ अक्टूबर की क्लास में आ रहे हैं, भोपाल इलाहाबाद से आ रहे हैं, इनका नंबर है 9794782212। तीसरे फ्रेंड हैं विजय जो रांची झारखंड से आ रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर है 9693885096। और तीसरे चौथे दोस्त हैं पद्म सिंह जो बागेश्वर उत्तराखंड से आ रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर है 8122273566। मित्रों अब कुछ जा है, एक बात मेरे दिमाग में सच में बहुत बैठी हुई है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, रास्ता नहीं दिख रहा। आप लोगों के बहुत से मेल आ रहे हैं जो इस मॉक टेस्ट कि का अंग्रेजी वर्जन चाह रहे हैं। मित्रों इसके बारे में कल मैंने आप लोगों से अपनी मजबूरी और सीमाएं बताते हुए माफ़ी मांगी थी कि वो हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। काश कि हम लोग ऐसा कर पाते, क्योंकि आप लोगों की जो डिमांड है वो बहुत ही जेन्यून है, उसे मैं समझ रहा हूं। लेकिन चूंकि आप लोग इस तरीके से लिख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी कोशिश होगी कि शायद आगे जाकर के कभी हम इसकी व्यवस्था कर पाए। तो फिलहाल इसके लिए मैं एकेडमी की तरफ से माफी चाहता हूं। दोस्तों और भी बहुत से मेल हैं, तो उन सबको जिनके मैं यहाँ नाम नहीं ले पा रहा हूँ और उनको भी जिनके मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ, मेल लिखने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दोस्तों के नाम हैं, विजय तिवारी कानपुर से, राकेश कुमार गुप्ता, तेरेशाल एग्जेंडर, रविंद्र अहिरवार विदिशा मध्य प्रदेश से, अंबिकेश विशाखापट्टनम से, रानी कुंभकार भोपाल से और मेघा बदुकिया जूनागढ़ गुजरात से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और मित्रों, मालूम है कल सैटरडे है और इसके बाद संडे है, तो दो दिन तक अब ये ऑडियो इस तरह से अवेलेबल नहीं होगा। सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज़ मिलेंगी, जैसे मिलती रही हैं, और इसके बाद फिर आपको योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स भी मिलेंगे। और जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच के स्टूडेंट हैं, उनको इस बीच में किसी भी दिन या जो भी समय सुटेबल होगा, कभी न कभी उनको ऑडियो उनके मेल पर भेजा जाएगा। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत लेना चाहूँगा। दो दिन बाद सोमवार को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, जो भी सामग्री आप लोगों के पास है उसे रिवाइज कीजिए, एनर्जी रिगेन कीजिए, अपने मन को हल्का रखिए, खुश रहिए और जो कुछ भी पढ़ें उसे आत्मसात कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में नमस्कार।